हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो मैं यहाँ पे गणित की सवालें बताऊंगा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा कैसे करूँगा, पर कोशिश करूँगा कि मैं पूरी तरीके से बता सकूँ। तो ये कक्षा 10 के लिए है ये पॉडकास्ट। तो कक्षा 10 की गणित, तो जो भी बच्चे अगर गणित सीखना चाहते हैं, इवन टीचर भी, तो वो आ सकते हैं यहाँ पे हमारे इस चैनल में और जुड़ जाइए। सबसे पहली बात तो ये अरिहंत, यूपी बोर्ड की गणित के लिए अरिहंत ने जो किताब प्रस्तुत की है वो कंप्लीट कोर्स, सच में कंप्लीट कोर्स है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यही किताब लें, और बाकी की दूसरी किताबों में तो ज़्यादा उतना अच्छा है नहीं। तो आपको ये किताब ही लेनी है। आज अध्याय 3 सीखेंगे, दो चरे और चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, और देखते हैं कि कितना कुछ हम यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आप किताब खोल लीजिए, अगर आपके पास किताब है, कॉपी ले लीजिए। वैसे कॉपी की ज़्यादा ज़रूरत तो पढ़ने वाली नहीं है, बस ऐसे सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिखाई दे रहा होगा, अध्याय 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए इसको समझते हैं, शुरुआत करते हैं बीजगणित से। और वैसे आपने बहुपद इससे पहले पढ़ लिया है, तो बीजगणित को ज़्यादा डिटेल में ना बता करके बस हल्का हल्का बता देते हैं। चर राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनका मान बदलता नहीं है। बीजीय व्यंजक किन्हें कहते हैं? चर और अचर राशियों को जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा जोड़ कर जब लिखा जाता है, संयोजन के साथ जब लिखा जाता है, जो संयोजन प्राप्त होता है उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और इस बीजगणितीय व्यंजक में अगर चर राशियों के घात कंसीडर की जाए, जांच की जाए, और घात पूर्ण संख्या मिले, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक, इन संख्याओं में भी चर राशियों की घात अगर मिलती है तो वो कहलाएंगे बहुपद। और इसी की अगली कड़ी में जो भी बहुपद आपको मिलते हैं उसी में बराबर चिन्ह के साथ जब उनको प्रस्तुत किया जाता है तब वो समीकरण या इक्वेशन बन जाते हैं। एक चर वाले समीकरण में केवल एक चर राशि दिखाई देती है। अब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, समीकरण युग्म है, तो पहली बात तो यहाँ पे आपको दो समीकरण मिलेंगे। समीकरण युग्म है इसलिए दो समीकरण मिलेंगे, रैखिक समीकरण है इसलिए चर राशियों की घात एक रहेगी, और दो चरों वाला है, दो चर वाले हैं इसलिए दो चर राशियाँ रहेंगी, यानी दो चर राशियाँ रहेंगी, दो रैखिक दो समीकरण रहेंगे रैखिक युग्म है। तो रैखिक समीकरण है तो चर राशि की घात एक रहेगी। अब आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं। जैसे कि दिया गया है 5x+15=0, एक समीकरण है लेकिन 5x+15 एक व्यंजक है। तो अगर आपको बराबर लगा करके साथ में 0 दिया जाए, यानी कि दो पक्ष जब मिलते हैं तो बन जाता है समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण आपने ऊपर जो देखा है 5x+15=0, ये जो मिलता है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब नीचे कह रहे हैं एक चर में रैखिक समीकरण, तो केवल एक चर वाले समीकरण जिनकी अधिकतम घात एक होती है एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब नीचे जितने भी आपको उदाहरण दिए गए हैं सब एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है। यहाँ पे सभी पे चर राशियाँ केवल यक्स, पहले समीकरण में यक्स आपको दिखाई दे रहा है, 6x+7=10+3x, इसमें आपको यक्स चर राशि दिखाई दे रही है। दूसरे में वाई दिखाई दे रही है, तीसरे में जेड है और चौथे में यक्स है। ऐसे में सभी जगह देखेंगे तो यक्स की घात केवल एक लगी है, यानी कि कोई घात नहीं लगी है, तो वहाँ पे घात एक होती है, इसलिए ये सभी रैखिक समीकरण हैं। और एक चर राशियाँ हैं, इस वजह से ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पन्ना पलट लेते हैं। पन्ना पलटने के बाद हमको मिलता है 48 नंबर पेज पर एक चर में रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण हल का हल अगर करना है तो आपके लिए बहुत आसान रहता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल एक बार याद करने के लिए दोबारा बता दिया जाते हैं कि चर राशियां जिनके साथ भी रहती हैं उनको बराबर के बाईं ओर रख दीजिए, और जिनमें अचर राशियां रहती हैं उनको बराबर के दाईं ओर रख दीजिए। उसके बाद जितनी भी जुड़ सकती हैं या फिर घट सकती हैं जोड़ या घटा दीजिए। उसके बाद अगर चर राशि वाले पक्ष में कोई संख्या इसके साथ गुणा या भाग में है तो उसको पक्षांतर करके भाग या गुणा में कर दिया जाता है। ऐसे में आपको समीकरण का हल मिल जाता है। दो चरों में रैखिक समीकरण। अब दो चर यक्स या वाई ए या बी आपको कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर जो मानक रूप दिया जाएगा यहाँ पे, उसमें दो चर राशियाँ यक्स और वाई रहेंगी, और ए बी सी यहाँ पे आपको मिलेगा जो वास्तविक अचर है। यहाँ पे भी ये भी एक प्रकार की चर राशि है, लेकिन इसे चर राशि नहीं माना गया है, इसको अचर राशि माना गया है। यक्स वाई तो यहाँ पे चर राशि हमेशा रहेगी, ए बी सी अचर राशियाँ आपको मिलती रहेंगी, हर सवाल के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। अब जैसे कि दिया गया है पहला उदाहरण, वहाँ पे लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और कॉमा लगा के कहा गया है ए डज नॉट इक्वल जीरो, बी डज नॉट इक्वल जीरो, ए बी सी वास्तविक अचर हैं। और नीचे एक उदाहरण दिया गया है और दूसरा दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर डी, ए डज नॉट इक्वल जीरो, बी डज नॉट इक्वल जीरो, ए बी और डी तथा डी वास्तविक अचर हैं। ऐसे दोनों स्थितियों में जो भी आपको मिलता है ये दो के दोनों क्या हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चर राशियाँ यक्स और वाई देखने के लिए मिलती हैं। ए बी सी डी जो आपको देखने को मिल रहा है वो एक अचर राशि है, जो कि उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। नीचे आपको याद दिखाई दे रहा है 3x - y + 7 = 0, यहाँ पे जो 3 है वो एक ही जगह पे है, और जो y के साथ माइनस में लगा है तो वहाँ पे -1 होता है, वो b की जगह पे है और c की जगह पे है 7। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी की जगह पे कोई अचर राशि आ गई है, लेकिन यक्स वाई की जगह पे कोई अचर राशि नहीं आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी अचर राशियां हैं, वास्तविक अचर हैं, और यक्स वाई चर राशियां हैं। अब आगे चलते हैं। नोट, यहाँ पे एक विशेष नोट दिया गया है, हम प्रायः प्रतिबंध को ए डज नॉट इक्वल जीरो, बी डज नॉट इक्वल जीरो से व्यक्त करते हैं, अर्थात ए और बी दोनों का मान ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल जीरो के लिए शून्य उत्तर है, अर्थात इसमें ए और बी का दोनों का जो मान है अगर इनका वर्ग करने के बाद जोड़ देते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो जीरो से बड़ा मिलेगा, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर जीरो होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, यानी कि यहाँ पे दो चरों वाला रैखिक समीकरण यह बन नहीं पाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल, अगर हल की बात करते हैं तो आ जाते हैं यक्स और वाई के मानों का युग्म, जो यक्स ए यक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए डज नॉट इक्वल जीरो, बी डज नॉट इक्वल जीरो को संतुष्ट करता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। यानी यक्स और वाई के अलग अलग मान आपको दिए जाएंगे, या फिर आप मानेंगे ये दोनों जो अलग अलग मान हैं किसी एक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, दोनों पक्षों को बराबर करते हैं, तो ये इसके उत्तर होंगे या फिर हल होंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होंगे। उदाहरण के लिए दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर दिया गया है -2, रैखिक समीकरण दिया है 5x + 3y = 4 का हल है, तो इसका हल है कि नहीं ये देखने के लिए आप x बराबर 2 और y बराबर -2 उठा के समीकरण 5x-3y बराबर 4 में रख देंगे। दोनों पक्षों को हल करेंगे तो आपको दोनों पक्ष बराबर मिल जाएंगे। ऐसे में आप कह देंगे कि इसका एक हल है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं मिलते हैं तो कह देंगे हल नहीं है। बात समझ में आ गई। एक विशेष नोट यहाँ पे फिर से दिया गया है, देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होता है। उदाहरण के लिए -4, 8 भी समीकरण 5x+3y बराबर 4 का हल है। यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं होता है, इसका अर्थ यह है कि एक ही समीकरण के कई x के मान और y के मान अलग अलग संतुष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग मान हो सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखने तथा उनको उनका आलेख बनाने की विधि। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखने और उनको आलेख बनाने की विधि में आप ये समझ लीजिए कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए, या फिर माना ग्रुप के लिए ax+by+c बराबर 0 लिया गया। अगर इसका लेख आपको खींचना है तो आप यहाँ से यक्स का मान या फिर वाई का मान, वाई को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जैसा कि आगे चल के वहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाई बराबर माइनस क्वेश्चन में ax+c/b। ऐसे में जो आपको दिखाई दे रहा है वो वाई के मान के बराबर है। आप यहाँ पे एक और नीचे आने के बाद एक कॉलम बनाया गया है। अगले उदाहरण में, उदाहरण नंबर 1 में आप देख रहे हैं, एक कॉलम बनाया जा रहा है जहाँ पे x के अलग अलग, x के सामने 0 और 4 लिखा गया है और नीचे y=20-3x=4, और उसके बाद अलग अलग मान मिले हैं। तो आपको करना बस ये रहता है कि अगर आपको एक समीकरण दिया गया है और उसको आलेख आलेखी रूप में निरूपित करना है तो उसी समीकरण में x के अलग अलग मान रख दीजिए, y के अलग अलग मान आपको मिल जाएंगे, जिनको आप नोट कर लेंगे। तो यक्स के एक पर्टिकुलर मान के लिए वाई का एक पर्टिकुलर मान मिल जाएगा। दोनों यक्स और वाई अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में जाते हैं, कार्तीय तल में दिखाते हैं, तो यक्स अक्ष पर चली गई दूरी को यक्स का मान और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को वाई का मान देखने पर एक बिंदु मिल जाएगा। उस बिंदु को आप जब निर्देशित करेंगे तो ऐसे ऐसे करके आप इस रैखिक समीकरण में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको अलग अलग मान मिल जाएंगे। यक्स के अलग अलग मान के लिए आपको वाई के अलग अलग मान मिलेंगे। अगर आपको, अगर ऐसी कोई सवाल पूछी जाती है कि इसको कार्तीय तल पे दर्शाइए या फिर आलेखित कीजिए, आरेखित कीजिए, आलेख बनाइए, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे कि एक्स के अलग अलग मान के लिए वाई के अलग अलग मान निकालेंगे, लेकिन एक्स का मान आपको मुश्किल से 5 रखना है। आप एक्स का मान 0+1+2-1-2 ले सकते हैं। ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीका होता है हल करने का। आप यक्स के अलग अलग मान ऐसे रखेंगे, यह जो 5 हमने बताए हैं, 0+1+2-1-2, तो इसके लिए वाई के मान भी एकदम आसान से सरल से आ जाते हैं। अगर कोई बटे में मिलता है या फिर दशमलव में मिलता है तो इसको अवॉइड कीजिए, आगे ढूंढते जाइए जो आपको सरल मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर सवाल ऐसे दी जाती हैं कि आपको इन्हीं पर ही आसानी से मान मिल जाता है और आप आराम से इसका हल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 1 पे। उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी, यानी कि व्हील, एक चरखी की सवारी करना चाहती है। जाइंट व्हील दिया गया है, मतलब कि बड़ा वाला झूला जिसपे मुझे चक्कर आता है, और हुपला हुपला खेलना चाहती थी। यदि प्रत्येक बार सवारी करने के लिए 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तब उसने कुल 20 रुपए खर्च किए। ऐसी स्थिति में निरूपित कीजिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए तथा इसका आलेख भी कीजिए। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि अगर जाइंट व्हील चरखी पर ये सवार होना चाहती है, सवारी करना चाहती है, झूला झूलना चाहती है, तो इसको 3 रुपए देने पड़ रहे हैं और हुपला खेलने के लिए 4 रुपए देने पड़ते हैं। और मान लेते हैं कि ये चरखी पर सवारी यक्ष बार करती है और हुपला खेलती है वाई बार। चरखी पर एक बार चढ़ेगी तो 3 रुपए लगते हैं, दो बार चढ़ेगी तो 6 रुपए लगेंगे, और अगर यक्स बार चढ़ेगी, तो हम 3 यक्स कर सकते हैं, और हुपला खेलने के 4 रुपए लगते हैं। तो अगर हम कहें कि हुपला वाई बार खेलती है, तो वाई और 4 को गुणा करा देते हैं तो 4 वाई मिल जाता है, यानी 3 यक्स का उसने चरखी खेला खरीदा है, चरखी की सवारी की है, और 4 वाई का उसने हुपला खेला है। दोनों को ऐड करेंगे यानी 3x+4y बराबर कुल मिला के 20 रुपये इसने खर्च किए हैं, बराबर 20 रुपये कर देंगे। ऐसी स्थिति में जो आपको मिल जाएगा 3x+4y बराबर 20, ये आपका एक द्विचर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। आप इसमें हल में देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आपको अगर आलेख निरूपित करना आलेखित करना है, समीकरण तो आपने लिख लिया है, आलेख भी खींचे कह रहा है, तो इसमें इतना लंबा जो दिया गया है आपको ये पूरा नहीं करना है, बस आपको यहाँ से y का मान निकाल लेना है, यानी y जो 4y है इसको यहीं पे रखिए, 20 के पीछे भेज दीजिए 3x को, और 4y इसके नीचे अगर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा y बराबर 20-3x/4। ऐसे में एक y का मान मिलेगा जो x के पदों में रहेगा। आप चाहे ऐसा करें या फिर अगर ना चाहें तो आप डायरेक्ट उसी समीकरण में यक्स के अलग अलग मान रखते चले जाएंगे, उत्तर आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने यक्स के मान 0 और 4 रखे हैं, आप जो पसंद आए वो रख सकते हैं, 0, 1, 2 और -1, -2 भी रख के यहाँ पे चेक किया जा सकता है, रख लेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसे करके आपको 2-3 बिंदु निकालने हैं, 2-3 बिंदुओं को निकालने के बाद जब ग्राफ पर आप दर्शाएंगे इन्हें, तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा में बने हुए हैं, और ऐसे में जो कुछ भी मिलेगा एक सीधी रेखा मिलेगी ग्राफ पर। तो इसी सीधी रेखा होने की वजह से ग्राफ पर जब आप निरूपित करते हैं तो सीधी रेखा बनी होने की वजह से ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण को भी अगर आप दिखाते हैं सीधी रेखा ग्राफ पर, तो एक सीधी रेखा मिलती है, इस वजह से उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। और अगर आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण को, इवन आप 3 चर वाला रैखिक समीकरण भी बनाते हैं, 3 चर वाला एक्स वाई जेड जो कि आपको इंटर में मिलेगा, तब पर भी आपको एक सीधी रेखा ही मिलेगी। और इस प्रकार ये आप दिखा पाएंगे। उसके बाद आ जाता है शाब्दिक प्रश्नों का बीजीय निरूपण। शाब्दिक प्रश्नों का बीजीय निरूपण मतलब कि अभी आपने जो देखा है कि अखिला गांव के मेले में घूमने गई, ये आपके शाब्दिक प्रश्न है, इसी का बीजीय निरूपण ऊपर जो आपने बनाया 3x+4y = 20, ये आपका बीजीय निरूपण है। इसको यहाँ पे अलग तरीके से कुछ बताया गया है नियम, चलिए देख लेते हैं। दिए गए कथन में चर राशियों की पहचान कीजिए तथा ये यक्स और वाई है मान लीजिए। प्रश्न में दी गई स्थितियों का प्रयोग करके अज्ञात राशियां यक्स तथा वाई में समीकरण बनाइए। बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात आप चर राशियों की पहचान करना है। चर राशियों को पहचान करने के लिए तो यहाँ पे तो फॉर्म मुश्किल था, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जब प्रश्न खत्म होता है तो आखिरी में आपसे पूछा जाता है कि क्या, आपसे जो पूछा जाए कि ये क्या है, वो क्या है, इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, तो वही आपकी चर राशि होती है जिसके बारे में पूछा जाए। सीधा सीधा आप उन्हें को मान लीजिए कि इसका मूल्य या फिर ये इसका जो भी इसने किया है उसके बराबर ये एक्स, दूसरा वाला उसके साथ पूछा जाएगा उसके बराबर वाई मान लेंगे। और जैसी जैसी शर्तें बनाते हैं उस हिसाब से एक समीकरण या फिर 2 समीकरण आपके सवालों में बनते हैं। 2 समीकरण अभी तो नहीं लेकिन अगले पेज में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में आप ये समझ लीजिए कि 2 चर वाले समीकरण रहेंगे, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि 2 समीकरण रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप ये दोनों समीकरण वाले जो भी आपको मिलेंगे इनको लिखा कैसे जाएगा? अभी आपने मानक रूप पढ़ा था ax+by+c=0, अभी यहाँ पे a1x+b1y+c1=0 यह पहला समीकरण ले लिया जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों में जहाँ पे ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए वन प्लस बी वन, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर डज नॉट इक्वल जीरो, जैसा कि पहले समीकरण में ही था, वहाँ पे बताया गया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो आपको दिया जाता है ए बी सी, इसमें एक विशेष बात होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये दो दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। तो वही सेम बातें इसमें भी बताई गई हैं, ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, एक नोट दिया गया है। कभी कभी हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को दो चरों वाले रैखिक समीकरण का निकाय भी कहते हैं। तो निकाय मतलब दो लोग, दो समीकरण। निकाय आपको कैसे समझाया जाए, निकाय मतलब जब आप चित्र बनाते हैं, इसको आलेखित करते हैं, तो वहाँ पे दो लाइनें जो खींची जाती हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, वही दो निकाय हो गए। अब यही दोनों समीकरण दो निकाय भी कहलाते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल किया था और उसको आलेखीय निरूपित किया था उदाहरण नंबर एक में, सेम वही काम इसमें दोनों चरों समीकरणों के लिए अलग अलग करना होगा। एक समीकरण के लिए आपको ए वन बी वन सी वन बिंदु आपको निकालने होंगे, दूसरे समीकरण के लिए आप पहले समीकरण के ए बी सी डी निकाल लेंगे, दूसरे समीकरण के पी क्यू आर एस निकाल लेंगे, ऐसे चार चार बिंदु दोनों समीकरणों के लिए अलग से निकाल लेंगे, जैसे कि आपने पीछे एक्स के अलग अलग मान रख करके वाई के अलग अलग मान निकाले थे, बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। बस दो समीकरण होने की वजह से दो बार करना पड़ेगा, और दो बार अलग अलग करने से आपको एक्स वाई के अलग अलग मान मिलेंगे। अब इनको आलेखीय जब निरूपित करेंगे, आप बिंदुओं को दिखाएंगे, उसके बाद जब इनको मिला खींचेंगे, तो संभव है आकृति जैसी दिखाई देगी, उस प्रकार इसके इनके हल होंगे, दोनों समीकरणों के हल हो सकते हैं। तब जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तब इसके केवल एक हल होंगे, और अगर दोनों रेखाएं जो भी आपको रैखिक समीकरण मिलेगा वो समांतर हो जाएंगे, तो इसके कोई हल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि आपस में मिल नहीं रहे, तो कोई उत्तर इनका कोई कॉमन आंसर नहीं हो पाएगा, यानी कि एक्स और वाई का एक कॉमन हल नहीं मिल पाएगा। और अगर ये दोनों पैरल हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती कहा जाता है, ओवरलैप कर जाती हैं, तो ऐसे में इसके अनेक अनंत हल होंगे, यानी एक्स के लगभग हर मान के लिए वाई का हर मान संतुष्ट करेगा। तो आप जब चित्र बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को कब काट रही हैं, कहाँ पे काट रही हैं। और एक सलाह ये देना चाहेंगे कि आप इनको कॉपी में ना बनाएं, ग्राफ कॉपी ले लें, वहाँ पे बनाएं अच्छे से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इनको बनाने में भी और बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो उदाहरण नंबर दो जो दिखाई दे रहा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कितना कुछ समझ में आ रहा है, ये देख लेते हैं। लिखा गया है, भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि इसके अंश तथा हर दोनों में 4 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखीय निरूपण कीजिए। अब ऐसी अवस्था में जब आपको भिन्न दिया जाएगा, तो भिन्न में आपको अंश और हर ये मालूम होना चाहिए। अंश ऊपर वाले कहा जाता है, हर नीचे वाले को कहा जाता है, तो अंश को आप x मान लेंगे, हर को y मान लेंगे। उसके बाद पहले जब कहा जा रहा है कि दोनों में दो जोड़ने पर, अंश व हर में दो जोड़ने पर, x में आप दो जोड़ देंगे, y में दो जोड़ देंगे, ऊपर नीचे बटे में करके लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 4/5 मिल जाएगा। ऐसे में जब त्रिक गुणा कराएंगे तो आपको एक समीकरण मिल जाएगा। दूसरी स्थिति आती है तब जब आप यक्स और वाई में दोनों ऊपर भी माइनस नीचे भी -4 कर देंगे और बराबर कर देंगे, 1/2 के तिरछा गुणा कराएंगे, त्रिकगुणा या वज्रगुणा कराएंगे तब आपको मिल जाएगा दूसरा समीकरण। ये दोनों समीकरणों में से पहले समीकरण को जब आप उठाते हैं, वाई बराबर निकालते हैं, एक्स के पदों में रखते हैं, ऐसे में जब आपको एक्स के अलग अलग मान रखने हैं, वाई के अलग अलग मान जो मिल रहे हैं उनको आप एक सारणी में लिख सकते हैं। और लिखना ही पड़ेगा, वहीं पे लिख दीजिए, ज़्यादा हल करना नहीं। और ये जो हल करना है तो आपको कॉपी में इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रफ में हल कर सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये इतना वेल नोन है कि ये कैसे कैसे हल हो रहा है, बशर्ते आपका उत्तर सही होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, दूसरा समीकरण को भी आप ऐसे ही हल करेंगे, ज़्यादा कुछ करना विशेष है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे। दोनों समीकरणों को हल करने के बाद अब एक ग्राफ कॉपी में, जहाँ पे भी आपने कार्तीय तल बना रखा है, दोनों को ड्रॉ करेंगे। दोनों को ड्रॉ करते हुए अगर आपको लग रहा है कि एक दूसरे को काटेंगे तो पंक्तियों को बढ़ाते चले जाइए, जिधर की ओर काटेंगे उधर की ओर बढ़ा दीजिए, और जहाँ पे काट दें वहाँ पे ढूंढ लीजिए, उस बिंदु को मार्क कर लीजिए। और ग्राफ पेपर में अगर आप बनाना है तो आप तुरंत फाइंड कर लेंगे कि ये बिंदु कौन सा है, और एग्जैक्टली वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की है तो आपका ये उत्तर ग्राफी निरूपण आलेखी निरूपण ये थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएगा। वैसे उदाहरण नंबर 3 बिल्कुल ऐसे है, 4 भी ऐसे ही है, आप इनको बड़ी आसानी से आलेखी निरूपण करके हल कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि x का मान जो आप मान रहे हैं, y का मान जो मिल रहा है पहले समीकरण के लिए, वही अगले समीकरण के लिए बड़ी आसानी से मिल जाता है। कुछ स्थितियों में ऐसा नहीं हो पाता है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो फिर पैरेलल ही रहेंगे, समांतर ही रहेंगे। संपाति बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक जगह पे काटने वाली ही पंक्तियां ज्यादातर या समीकरण ज्यादा दिए जाते हैं। और अब जब आप इनको आलेखीय निरूपित करेंगे तो एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे उस बिंदु को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वही x का मान x पे जितना चले हैं वाई और y का मान ये जो मिलेगा ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला होगा, क्योंकि यही आपका x और y का मान है, या फिर ये द्विघात समीकरण द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल है, या फिर x y का मान है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल हल करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक आलेखीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। आलेखीय विधि आपको बता चुका हूँ मैं, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे देखते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन और वज्रगुणन ये तीन के तीनों विधियाँ पढ़नी जरूरी है, तीन के तीनों विधि है, या फिर ये जो आलेखीय विधि है, चार की चारों विधियों से आपका उत्तर समान ही मिलता है। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि इस विधि द्वारा हल कीजिए, अगर आप कोई दूसरी विधि लगाते हैं तो आपको इसके अंक नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि किस विधि से किसको हल किया जाएगा, कौन सी विधि कैसे काम करती है, इस वजह से ये जरूरी हो जाता है। तो अब वीडियो को करते हैं खत्म, हो चुका है बहुत टाइम। आप अगले सॉरी वीडियो बोल गया, बात को करते हैं खत्म, आगे फिर आ जाएंगे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए हमारे साथ गणित। ओके।